أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين نهج البلاغة مكتوب نمبر 53 مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کا مالک اشتر کے نام عہد نامہ. جب مولا نے مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنایا, اس مکتوب کا بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. چند جملے گزشتہ درس کے تکرار کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. مولا علی علیہ السلام مالک اشتر سے فرماتے ہیں, تمہاری رعایا میں سے تم سے سب سے زیادہ دور اور سب سے زیادہ تمہیں ناپسند وہ ہونا چاہیے جو لوگوں کی عیب جوئی میں زیادہ لگا رہتا ہو, کیونکہ لوگوں میں عیب تو ہوتے ہی ہیں. حاکم کے لیے انتہائی شایان یہ رویہ ہے کہ ان پر پردہ ڈالے, بس جو عیب تمہاری نظروں سے اوجھل ہوں انہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا, کیونکہ تمہارا کام ان عیبوں کو مٹانا ہے کہ جو تمہارے اوپر ظاہر ہوں, اور جو چھپے ڈھکے ہوں ان کے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا. اس لیے جہاں تک بن پڑے عیبوں کو چھپاؤ, تاکہ اللہ بھی تمہارے ان عیبوں کی پردہ پوشی کرے جنہیں تم اپنی رعایا سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو. بس جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے, تو اسے بھی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکتا ہو, ممکن ہو, لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے. اس کے بعد مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مالک اشتر کو فرماتے ہیں, اطلق عن الناس عقدۃ کل حقد وقطع عنك سبب کل وتر. لوگوں سے کینے کی ہر گرا کو کھول دو اور دشمنی کے ہر سبب کو کاٹ ڈالو. یہ جو عبارت ہے اس میں دو طرفہ بات کی گئی ہے. پہلی بات, اطلق عن الناس عقدۃ کل حقد, کہ لوگوں کے اندر سے ہر وہ گرا کھولنے کی کوشش کرو کہ جس کی وجہ سے لوگ تمہارے بارے میں نفرت پیدا کر لیں, تم سے بغض اور کینہ پیدا کر لیں. اور اگر آپ اس سے پہلے والی باتوں کو اپنی توجہ میں لائیں, تو ایک بہت بڑا سبب نفرت کا کون سی صفت ہوتی ہے؟ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں جو ان کے عیب ڈھونڈتا ہے, اور جو ایسے لوگوں کو اپنے قریب رکھتا ہے جو لوگوں کے عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسے بتاتے ہو. آپ خود تصور کریں ایک ایسے شخص کو کہ جس کے اندر یہ صفت ہو, وہ آپ کو اچھا لگے گا یا برا؟ برا لگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی آپ کا کہیں اس سے سامنا ہوگا, آپ کو فوراً یہ خیال آئے گا کہ اس سے بچ کے رہنا ہے, کیونکہ یہ عیب ڈھونڈتا ہے. اور یہ عیب جا کر مثلاً بڑوں کو, حکمرانوں کو بتاتا ہے, تو اس شخص کے بارے میں بھی نفرت پیدا ہوگی, اور اس بڑے اور حکمران کے بارے میں بھی نفرت پیدا ہوگی کہ یہ کیسی عادت ہے اس میں کہ یہ ہمارے عیبوں کے پیچھے لگا رہتا ہے. بس مولا مالک اشتر سے فرما رہے ہیں کہ اپنے اندر سے ہر اس چیز کو دور کر دینا کہ جو لوگوں کی نفرت کا سبب بنتی ہے, یعنی سبب بنتی ہے کہ تیری رعایا تجھ سے نفرت کرے. اور پھر فرمایا, وقت عن کا سبب کل وتر, और इसी तरह अपने अंदर से भी हर वो सबब खत्म कर दे, काट दे, वक्ता यानी कत कर दे, काट डाल ऐ मालिक अपने अंदर से हर उस सबब को खत्म कर दे कि जो तेरी तन्हाई का सबब बन जाएगा, यानी लोग तुझे तुझसे दूर हो जाएंगे, अवाम तेरी रियाया तुझसे दूर हो जाएगी, और उनमें से एक बड़ा सबब यही है कि जब अपनी रियाया के इंसान ऐब सुनता रहे, हुक्मरान अपनी रियाया की बुराइयां सुनता रहे, ऐसे लोगों को अपने पास इकट्ठा कर लिया हो आसपास, तो आहिस्ता आहिस्ता अवाम की हमदर्दी के जज्बात उस हुक्मरान के अंदर से ख़त्म हो जाएंगे। हमेशा बुरी बुरी चीज़ें अवाम के बारे में, बुरी रिपोर्टें, खराबियों की रिपोर्टें सुन सुन कर क्या असर होगा कि ये मेरी रियाया ये है इस काबिल के इनके साथ बुरा सलूक किया जाए, इन पर डंडा चलाया जाए, इन पर सख्ती की जाए, इनको सजाएं दी जाए। रियाया पर रहम दिली और नरमी का जज्बा खत्म हो जाएगा ऐसे हुक्मरान से। तो ये तो एक सबब है कि जो लोगों के दिलों में भी नफरत पैदा करता है अपने हुक्मरान के बारे में, और हुक्मरान के दिल में भी नफरत पैदा करता है अपनी रियाया के बारे में। कौन सा सबब? अहम तरीन सबब ये लोगों के ऐब तलाश करने के लिए ऐसे ऐब जू लोगों को अपने आसपास इकट्ठा कर लेना, अवाम में भी नफरत और खुद हुक्मरान के दिल में भी अवाम की और रियाया की नफरत। मौला फरमा रहे हैं कि ये सबब भी और हर वो सबब, हर वो चीज ऐ मालिक अपने अंदर से खत्म कर जिसकी वजह से लोग तुझसे नफरत करते, और हर वो सबब भी अपने अंदर से ख़त्म कर ले जिसकी वजह से तेरे दिल में अपनी रियाया के बारे में नफरत पैदा होगी, और आहिस्ता आहिस्ता तू तन्हा रह जाएगा, तेरे आसपास सिवाय उन चुगलखोरों के और कोई बाकी नहीं रहेगा। फिर फरमाते हैं मौला वतगाबा अन कुल मा ला यदहु लक, और ए मालिक हर वो चीज के जो तुझ पर वाज़े नहीं है उसको ऐसे समझो कि तुमने देखी नहीं है। देखिए एक दफा इंसान ऐसी खराबी को देखता है कि उस पर वाज़े हो जाता है कि ये जुर्म है, तो हुक्मरान की जिम्मेदारी है कि उसकी इस्लाह की कोशिश करे। लेकिन कभी कभी सिर्फ मशकूक होता है, उसे शक पड़ता है कुछ देख करके मसला खराब है, तो यहां पर एक हुक्मरान को जो नसीहत की जा रही है, मौला अली अलैहिस्सलाम जो नसीहत फरमा रहे हैं वो क्या है कि जो तेरे पर वाज़ह नहीं है बात और मशकूक है, अभी तरदीद है उसके बारे में, तगाबा, तगाबा का माना क्या है, यानी ऐसा रवैया रख के गोया तुझसे गायब है, तुझे पता ही नहीं, जिसको हम दूसरा लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं तगाफुल, गोया तूने देखा ही नहीं, गोया तुझे पता ही नहीं है। ये हम दोबारा आपकी खिदमत में अर्ज कर दें कि ये अहकामात और नसीहतें उन मवारिद में हैं कि जहां लोगों की शख्सी जिंदगी से मरबूत खराबियां, ऐसे जराइम मुराद नहीं है कि जो मुआशरे पर बुरे असरात डाल रहे हो, जिससे मसलन मुल्क का अमन अमान खतरे में हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स की सरगर्मियां मशकूक हैं, किस एतबार से मशकूक हैं, उसकी जाती मामला नहीं है बल्कि मुल्क कौम के अमन अमान का मामला है, उसके बारे में पता चला है कि इसकी सरगर्मियां ऐसी हैं कि यूं लगता है जैसे दुश्मन मुल्क के लोगों के साथ ये राबते में है। अब यहां पर बात को पता चलाना, तहकीक करना जरूरी है, यहां पर अगर चश्मपोशी की गई, यहां पर अगर तगाफुल किया गया तो हो सकता है सैकड़ों हजारों बेगुनाह मुल्क के अवाम की हलाकत का सबब बन जाए, मुल्क को कौम के बहुत बड़े नुकसान का सबब बन जाए। तो यहां पर सर्फ नजर नहीं करना कि कौन से मवारिद हैं, वो ऐब जिसके बारे में मौला पहले फरमा चुके कि लोगों में तो ऐब होते ही हैं, अब उनकी टो में लगे रहना, उनके पीछे लगा देना कि इनकी शख्सी जिंदगी की खराबियां भी आके रिपोर्टिंग करें, ये ना करना। तो इंशाल्लाह इन दोनों में फर्क जहनों में मौजूद रहना चाहिए। वतगाबा अन कुल माला यदहुलक, और हर वो चीज के जो तेरे लिए वाजह नहीं है उसके बारे में तगाफुल से काम लो, गोया कि तुमने देखा ही नहीं। ये लोगों की जाती जिंदगी की जो चीजें, फिर फरमाते हैं वला ताजलन इला तस्दीक साइन, ए मालिक हरगिज जल्दी न करना चुगलखोर की रिपोर्टें देने वाले की रिपोर्ट की तस्दीक करने में। आमतौर पे इंसान को इस किस्म के चमचे उन पर बड़ा एतमाद हो जाता है कि ये जो कहते हैं सही कहते हैं। तो मौला मालिक के अश्तर से फरमा रहे हैं कि अगर इस किस्म का कोई बंदा के जो ऐब बताता है आकर लोगों के, कभी भी हरगिज इसकी बात की तस्दीक करने में जल्दी ना करना और कोई एक्शन ना ले लेना, खराबी हो जाएगी। वला ताजलन इला तस्दीक साइन, साइन साई असल में कहते हैं कोशिश करने वाले को, लेकिन यहां मुराद है लोगों के ऐब रिपोर्ट करने की कोशिशें करने वाला, इसमें फुर्तियां दिखाने वाला। ऐसे शख्स की बात की तस्दीक करने में हरगिज जल्दी ना करना, क्यों? फइन्नस्साइया गाशिन, क्यों? इसलिए कि ये जो साई लोगों के ऐब ढूंढ कर आगे बताने वाले बताने की जो कोशिश में होता है उसको मजा आता है, उसकी ये सिफत होती है, ये शख्स क्या होता है? गाशिन, फरेब देने वाला, क्योंकि ये चाहता है कि अगले को दूसरे का ऐब पता चले। अब ये अपने पास से भी घड़ कर बात को पक्का करने के लिए, ताकि कोई शक ना रह जाए मेरी बात में, ये फरेबकारी भी करता है, अपने पास से भी बातें घड़ कर साथ मिला लेता है। आप देखिए किस तरह खबरदार कर रहे हैं इस हरकत से मौला अली अलैहिस्सलाम मालिक अश्तर को, कि एक हुक्मरान को कैसे होशियार रहना चाहिए और अवाम के बारे में ऐसे लोगों की रिपोर्ट्स पर एक्शन लेने में हरगिज जल्दी नहीं करनी चाहिए। और उसका सबब बता रहे कि ये लोग धोखेबाज होते हैं, ये अपनी ड्यूटी समझते हैं कि लोगों के ऐब वहां पहुंचाएं और इसमें ये अपने पास से भी घड़ कर इजाफा करने में नहीं चूकते। फइन्नस्साइया गाशिन, गाशुन इसलिए कि जो ये साई होता है चुगलियां चुगलखोर ऐब बताने वाला, ये फरेबकार होता है, धोखा देने वाला होता है। वह इन तशब्बह बिन्नासिहीन, और फिर खबरदार कर रहे हैं, और अगरचे कि इसकी शबाहत नसीहत करने वालों की तरह होती है, यानी लगते ऐसे हैं ये लोग जिनको रिपोर्टें देते हैं जाके, उनको लगता है ये तो बड़ा मेरा खैर खा है, ये तो बड़ा मुझे हालात से आगाह रखना चाहता है, ये इसलिए मुझे हर चीज बताता है। मौला खबरदार फरमा रहे हैं कि ये इनकी शबाहत, ये मिलते जुलते होते हैं खैर खा और नसीहत करने वालों से, लेकिन होते फ्रॉड है, होते फरेबकार हैं, लिहाजा ए मालिक इनसे होशियार रहना। इस फरमान के जिम्न में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक हदीस आपकी खिदमत में बयान करना चाहूंगा। हमने अर्ज किया कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो सीखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से सीखा, और अगर आप मौला अली अलैहिस्सलाम से कि जो सही रिवायात हैं फरामीन की उनको अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अगर आप रसूलुल्लाह के फरामीन सही से आगा हैं कि वही बातें। और फिर इन दोनों हस्तियों की बातें अगर आप कुरान मजीद की आयात से मानूस हैं तो आपको वाज़े हो जाएगा कि कुरान मजीद ही से ली गई ये बातें हैं जिनको बयान फरमाया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से फरमाते हैं, ला तवज्जो से सुनिए, ला युबलिगनी अहदुम मिनकुम अन असहाबी शैअन, तुम में से कोई भी मुझे मेरे असहाब की कोई बात ना बताए। क्या मुराद कौन सी बातें? वही बात, शख्सी ऐब जो छोटी मोटी खताएं होती हैं, कमियां कोताहियां होती हैं, हर इंसान में होती हैं। खूब तवज्जो के साथ सुनिए और अजमत देखिए, तुम में से कोई भी मेरे असहाब के बारे में कोई चीज मुझे ना बताए, यानी खबरदार कोई मेरा रिपोर्टर बनने की कोशिश करे, अपने आप को मेरा मुखलिस बनाकर मेरे साथियों की जो मोमिनीन है उनकी छोटी छोटी बातें, आज उसने ये कर दिया, आज उसने नमाज बड़ी सुस्त पड़ी है, आज वो सुबह नहीं आया, आज वो फलान नहीं हुआ, मसलन ऐब, छोटे छोटे ऐब जो इंसानों में होते हैं, मेरे असहाब के बारे में तुम में से कोई भी मुझे ये खबरें ना पहुंच, कोई खबर ना पहुंचाए ऐसे। फिर उसका सबब बयान फरमाते, फइन्नी उहिब्बु, इसलिए के यकीनन मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, मैं चाहता हूं, अन अखरुज इलैकुम व अना सलीमुस सदर, इसलिए के मुझे ये बात पसंद है कि मैं जब तुम्हारी तरफ निकलूं, यानी तुमसे मेरी मुलाकात हो, तो मेरा दिल साफ हो तुम्हारे बारे, मेरा सीना साफ हो। ये ऐबों की रिपोर्टिंग करने वाले मेरे दिल में अपने साथियों के बारे में, अपने असहाब के बारे में कोई शकूक व शुभात न डाले। अल्लाह का नबी फरमा रहा, और अल्लाह का नबी क्यों फरमा रहा? कुरान मजीद फरमा रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न, ए ईमान वालों बहुत सारे गुमान करने से इज्तनाब करो, बचा करो, इन बादज़्ज़न इस्म, बाज गुमान गुना होते हैं, वला तजस्सुस, तजस्सुस न करो, तो में न लग जाओ दूसरे की मसाइल के अंदर, उसके जाती मसाइल के अंदर घुसने की, टो लगाने की, सुराग लगाने की कोशिश ना करें। आप देख लीजिए, हम अपनी जिंदगियों पर निगाह करें, अगर हम गौर से देखें, हर उस मौके को याद करें जब किसी मोमिन के बारे में हमारे दिल में बुराई पैदा हुई, तो क्या देखेंगे? बहुत सारे मवारिद ऐसे होंगे जिसमें सुनी सुनाई बात पर चल पड़े, किसी के बारे में आजकल मसलन फर्ज करें सोशल मीडिया पर बात आ गई, हमने झट से यकीन कर ली, किसी के बारे में चंद अफराद खड़े होकर बात कर रहे थे, हम भी उस महफिल में बैठे और हमने उनकी बात सुनी, इतनी जरूरत नहीं है कि जाके उस मोमिन से तस्दीक कर लें कि ये वाकया है कि नहीं है। नहीं करते, और दिलों में बुग्ज और कीने पैदा हो जाते। लिहाजा अल्लाह के नबी की सीरत कुरान ने फरमाया उसवा हसना है। आमतौर पे इंसानों को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो दूसरों के ऐब रिपोर्ट करते हैं आकर। अल्लाह के नबी फरमा रहे तुम में से कोई भी मुझे मेरे असहाब के बारे में कोई ऐसी चीज ना बताए आकर, इसलिए कि मुझे पसंद है, ये बात मुझे अच्छी लगती है कि मैं जब तुम्हारी तरफ निकलूं, यानी तुमसे मुलाकात करूं अपने साथियों से, वह अन सलीम सदर, तो मेरा सीना साफ हो तुम्हारे बारे में। जबकि ऐब रिपोर्ट करने वाले ये बात खत्म कर देते। इसके बाद खुतबे को, इस अहदनामे के अगले हिस्से में मौला चंद और हिदायत फरमा रहे हैं मालिक अश्तर को। اور میں پہلے بھی عرض کر چکا, دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اس کے لیے ہے کہ جو جس کو کسی شہر کا, کسی صوبے کا, کسی ملک کا حکمران بنا دیا جائے. ہم میں سے ہر ایک اپنے ماتحت چھوٹی چھوٹی حکومتیں رکھتا ہے. بعض لوگ کسی دفتر میں ان کے ماتحت چند افراد ہوتے ہیں, بعض لوگوں کے ماتحت ان کے گھر والے ہوتے ہیں, اور اسی طرح ہر شخص اپنے بارے میں سب سے پہلے ان نصیحتوں پر غور کرے اور اپنے آپ کو پرکھے. اب یہ بھی جو اب بات کہنے جا رہے ہیں انتہائی قیمتی. مولا فرماتے ہیں وَلَا تُدْخِلَنَّ فِي مَشْوَرَتِكَ بَخِيلًا يَعْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ. اے مالک اشتر, ہرگز اپنے مشورے میں کسی بخیل, کسی کنجوس کو شامل مت کرنا, ہرگز مت کرنا. تو نے رعایا کا خیال رکھنا ہے, تو نے رعایا کو عطا کرنا ہے, تو نے ان کی خوشحالی کے لیے کوشش کرنی. جب تو ایک بخیل سے مشورہ لے گا تو وہ کیا کرے گا؟ یَعْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ, وہ تجھے فضل سے یعنی زیادہ عطا کرنے سے روک دے گا, اور طرف لگا دے گا, اپنی تھیوریاں پیش کر دے گا تجھے. چونکہ بخیل ہے, بخیل سے عطا کے مشورے میں کوئی خیر کی توقع مت لے. وہ تو کہے گا یہ نہ کرنا, کل کو ملک میں آلات ہی ہو جائیں گے تو کیا کریں گے, آپ بچا کے رکھیں سارا پیسہ اپنے خزانے میں رکھیں, کوئی نہیں عوام تو گزارا کر لیتے ہیں, یہ ہے وہ ہے فلان ہے, آپ اتنی مشکلات ہیں آپ تھوڑا حل کر, آپ اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لیں گے. اس قسم کے مشورے دے گا کون؟ بخیل. میں نے عرض کیا نہ صرف حکمران, ہم سب بخیل لوگوں کو جس کا ہمیں پتا ہو یہ کنجوس ہے. فرض کریں آپ کو پتا چلا کہ مثلا کچھ غربا ہیں, کچھ مساکین ہیں, ان کو مدد کی ضرورت ہے. آپ کا جی چاہا, آپ کے اندر جو ایمان تھا, اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوئی آپ کے ایمان کی وجہ سے, اور آپ نے وہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا, لیکن آپ نے مشورہ کیا ایک ایسے شخص سے اپنے آس پاس کے لوگوں میں کہ جو بخیل ہے, جو خدا کے راستے میں خود بھی نہیں خرچ کرتا, کنجوس ہے, تو آپ جان لیں کہ بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ آپ کے عطا کرنے کے, غریبوں کی مدد کرنے کے ارادے کو خراب کر دے گا, ہزار دلیلیں آپ کو پیش کر دے گا, آلٹرنیٹ بتائے گا, ثواب تو اور طریقوں سے بھی مل جاتا ہے, سارے غریبوں کا ٹھیکہ ہم نے تھوڑی لیا ہوا, ہم ساری غربت تھوڑی دور کر سکتے ہیں.